All of you have come from different parts of India. हम सब स्पोर्ट्स पर्सन कैसे अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं और मेंटल फिटनेस से कैसे हम ओलंपिक्स में भी मेडल्स जीत सकते हैं, ये सबके ऊपर प्रकाश डालने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो आप सबको वेलकम है और अभी हम इसका उद्घाटन सत्र इनॉग्रल सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए मंच पर मैं आमंत्रित करती हूं राजयोगी डॉक्टर बीके बसवराज राजऋषि जी को। हम सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। राजयोगिनी डॉक्टर बीके निर्मला दीदी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शशि दीदी जी, ब्रह्मा कुमार जगबीर भाई जी, ब्रदर अमरजोत सिंह जी, ब्रदर नीरज कुमार मेहरा जी, ब्रदर राजेश चौहान जी, जस्टिस ईश्वरैया जी, कॉन्फ्रेंस है राजयोगा ओलंपिज्म एंड स्पोर्ट्स फॉर ह्यूमैनिटी एंड ग्लोबल पीस के लिए। तो इसमें आप सबको स्वागत है, स्वागत है। कॉन्फ्रेंस ऑन राजयोगा ओलंपिज्म एंड स्पोर्ट्स फॉर ह्यूमैनिटी एंड ग्लोबल पीस। तो इसमें बहुत कुछ हम सीखने के लिए आए हैं। मैं अभी रिक्वेस्ट करती हूं हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनों से, सभी आमंत्रित मंचासीन गेस्ट को बैजेस और फूलों से स्वागत करें। आप सभी को भी मालूम है ब्रह्मा कुमारी का जो स्पोर्ट्स विंग है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जस्टिस वी ईश्वरैया जी, ऑनरेबल जस्टिस वी ईश्वरैया जी को स्टेज पर आह्वान करती हूँ। ब्रह्मा कुमारी का स्पोर्ट्स विंग नेशनल वाइड में कैसे स्पोर्ट्स पर्सन को अपने मेंटल फिटनेस के द्वारा बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसके लिए बहुत मार्ग प्रदर्शन दे रहे हैं और साथ साथ प्लेयर्स को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन फोकस बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे मेंटल एक्सरसाइजेस सिखाते हैं ताकि उसमें वो सब क्वालिटीज बढ़ते और साथ साथ मेडल्स भी ले सकते हैं। और कैसे अपने एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज को एनहांस करें ताकि फिर से इस भारत में हम बेटर परफॉर्मेंस कर सकते, ये सब पर प्रकाश डालते हैं। पहले हम सब वेलकम डांस देखते हैं। ब्रह्मा कुमारी राधिका जो अहमदाबाद से पधारे हैं, वो हम सबको नृत्य के द्वारा वेलकम करते हैं।
शुभ स्वागत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से
मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन
स्वागत और सत्कार का मौसम स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है
आगमन से आपके आनंद ही आनंद है
शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम विश्वासों में हिले मिले सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले नया नहीं ये बहुत पुराना नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है
थैंक यू राधिका. अभी हम सबको स्वागत करेंगे शशि दीदी जी जो कि लास्ट 50 इयर्स से इस ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं और पास्ट 45 इयर्स से अपने जीवन को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में अर्पित करके बहुत सारे हजारों लोगों को रोज गाइडेंस देते आगे बढ़ाते हैं. और दीदी नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर स्पोर्ट्स विंग है और ब्रह्मा कुमारी इसके जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स माउंट अबू खास करके पांडव भवन के कैंपस में रहते हुए बहुत सेवाओं का कार्यक्रम संभालते हैं और पूरे विश्व में भी भ्रमण करके अपनी सेवाएं देते रहते हैं। अभी शशि दीदी जी हम सबको स्वागत करेंगे।
ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वर विश्वविद्यालय की भगिनी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत स्पोर्ट्स विंग के द्वारा कॉन्फ्रेंस में आए हुए पूरे भारत से आए हुए स्पोर्ट्स पर्सन्स का मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय इस विद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी जो कि वर्तमान समय अपने 100 ईयर में चल रही हैं। 99 ईयर्स उन्होंने पार कर लिया है और 100 ईयर की हैं, लेकिन इतना एक्टिव, इतना क्रिएटिव और हम सबको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सदा एक्टिव बढ़ाती रहती हैं और सदा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणाएं देती रहती हैं। ऐसी दादी मुख्य प्रशासिका दादी जानकी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसके साथ इस विद्यालय के संस्थापक पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा जब इस विद्यालय की स्थापना 1936 और 37 में हुई, उस समय इस विद्यालय में छोटे बच्चे, माताएं, भाई और कुछ बुजुर्ग और यंग एज के भाई बहने उस समय आए, तो मुझे वो दिन याद आ रहा है कि आज हम स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पिताश्री जी ने आज से 79 ईयर्स पहले छोटे छोटे बच्चों को स्पोर्ट्स पर्सन्स बना दिया था और 5 मई 1950 को ये विद्यालय यहाँ माउंट आबू में शिफ्ट किया था और आज 8 मई है, 5 मई 1950 को जब पिताश्री जी और ये विद्यालय भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद ये विद्यालय 3-4 वर्षों तक वहाँ पाकिस्तान में रहे, कराची में रहे, उसके बाद यहाँ माउंट आबू में शिफ्ट किया और जब वो शिफ्ट किया तो वो दृश्य आज हमारे सामने है। कैसे छोटे छोटे बच्चे आबू रोड से लेकर माउंट आबू तक पहाड़ियों पर ट्रेकिंग करते हुए आए, आपको वो फोटो देखने को मिलेंगे। ताली तो बजा दीजिए, ऐसे बच्चों ने आज से ट्रैकिंग किया और आज वो 100 ईयर में है। हमारी दादी जानकी जी का आप फोटो देखेंगे कि उस समय कितनी छोटी एज में थी और वो नीचे से सब आबू रोड से पैदल ही आए थे। किसी ने अपने सिर के ऊपर सामान रखा हुआ है, कोई अपना कपड़ा ला रहा है, कोई सब कुछ। वो फोटो आपको जब आप पांडवपुर में जाएंगे, इस विद्यालय के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर को देखने के लिए जाएंगे और वहाँ हिस्ट्री हॉल में ये फोटोस देखेंगे कि किस प्रकार से पिताश्री जी ने सभी के अंदर स्पोर्ट्स कॉन्शियस क्रिएट किया था। तो आज मुझे वो खुशी हो रही है कि वो स्पोर्ट्स कॉन्शियस जो इस विद्यालय के संस्थापक पिताश्री जी ने 79 ईयर्स से स्टार्ट किया था, आज इस विद्यालय के पूरे विश्व के अंदर लगभग 9000 के करीब ब्रांचेस हैं, 138 देशों में इस विद्यालय के ब्रांचेस हैं, पूरे भारत और विश्व के अंदर लगभग 9 लाख फैमिलीज हैं जो इस विद्यालय के रेगुलर स्टूडेंट हैं और हर रोज इस ईश्वरीय ज्ञान और योग के द्वारा अपने जीवन के अंदर मोटिवेशन, माइंड की कंसंट्रेशन, जीवन को बैलेंस कैसे लीड करना है और साथ साथ पिताश्री जी ने और हमारी दादियों ने हमें ये सिखाया है कभी भी जीवन में हारना नहीं है, कभी भी जीवन में थकना नहीं है, चलते चलो, बढ़ते चलो, सीखते चलो, सिखाते चलो। तो पिताश्री जी हमेशा कहा करते थे कि ये कभी किसी भी समय आपके जीवन के अंदर कभी हार हो जाए तो वो हार नहीं है, वो एक नया स्टेप है आपको अपने जीवन में सीखने के लिए। और मुझे याद आता है कि पिताश्री जी स्वयं हम सबको पहाड़ों पर ले जाते थे, डेली ट्रेकिंग कराते थे, कभी किस पहाड़ी पर ले जाते थे। पिताश्री जी ने हमें ये सिखाया कि मन का और तन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, पिताश्री जी स्वयं बैडमिंटन खेला करते थे, 93 इयर्स की एज में वो बैडमिंटन खेलते थे। और 93 इयर्स की एज में बैडमिंटन खेलते हुए वो कभी भी हारे नहीं हैं। और कभी कभी वो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए खुद अपने को पीछे कर लेते थे और बच्चे जीत जाते थे, तो उन्हें हमेशा कहते थे कि जैसे जीत की खुशी है ऐसे जीवन के अंदर सदा आपके जीवन के अंदर उमंग रहे, कॉन्फिडेंस रहे, और इस उमंग और कॉन्फिडेंस से आप अपने जीवन के अंदर सदा खुशी के जीत के गीत गाते रहेंगे। न केवल आप गाएंगे लेकिन पूरा समाज और पूरा विश्व आपके गीत गाएगा। तो आज मैं पूरे भारत से अपने खिलाड़ी भाई बहनों को देखकर न जाने कितना खुशी मेरे को है। जैसे भी हम स्वागत डांस सुन देख रहे थे और स्वागत गीत के अंदर हमने सुना कि मंदिर की सजावट होती है मूर्ति से, लेकिन आज का ज्ञान सरोवर का ये आंगन किससे सजा है? ऐसे महानुभावों से सजा है जिनके ऊपर सारे विश्व की आंख है। आज ज्ञान सरोवर के हॉल, हार्मनी हॉल में इतने सभी खिलाड़ी भाई बहनों को देखकर मैं समझती हूँ कि ऊपर से इंद्र देवता भी खुश हो रहे होंगे और देवताएं भी ऊपर से आपके ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा करेंगे। उन्हें भी इस बात का नाज है कि ये हमारे खिलाड़ी जो हमारे भारत देश का नाम रोशन करने वाले हैं, जिनके ऊपर हमें सारे विश्व के अंदर पूरे भारत के नाम रोशन करने की उम्मीदें हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस का इस बार विषय भी यही रखा गया है, कॉन्फ्रेंस ऑन राजयोगा, ओलंपिज्म, स्पोर्ट्स फॉर ह्यूमैनिटी एंड ग्लोबल पीस। ये जो विषय रखा गया है ये बहुत ही चुन करके रखा गया है, क्योंकि आपको मालूम है 2016 में ब्राजील रियो में ओलंपिक गेम्स होने वाली हैं, और हमारे खिलाड़ी कुछ समय से उनके खेलों के अंदर काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो रही हैं, और कोई ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल भी, लेकिन उतने तो नहीं ले पाए हैं, गोल्ड मेडल लिए हैं, सिल्वर मेडल्स लिए हैं, कांस्य तो लिए ही हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ियों के अंदर इतनी जो एबिलिटीज हैं, सब एबिलिटीज हैं, लेकिन कभी कभी उनके अंदर कंप्लेंट की भावना आ जाती है कि हमारे को ये सुविधा नहीं है, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे, हमारे से ये नहीं हो सकता है, हमारे इंस्ट्रक्टर ये नहीं, हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाएं तो सुविधाएं होते हुए भी और कम सुविधाओं में भी अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी परफॉर्मेंस को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को इस स्पोर्ट्स विंग के द्वारा यहाँ कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसलिए बुलाया गया है कि हम अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाएं, और कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाते हुए एम को सामने रखें, गोल ओरिएंटेड हो, और जीवन के अंदर कभी भी निराशा नहीं आए, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए, और अपने अंदर हम ऐसी पावर को क्रिएट करेंगे जिससे हम अपने जीवन के अंदर, चाहे संसार में रहते हुए, चाहे परिवार में रहते हुए, चाहे समाज में रहते हुए, चाहे खेल के क्षेत्र में रहते हुए, हम अपनी परफॉर्मेंस को इतना एक्यूरेट करेंगे कि आज की कोई भी समस्या हमारे सामने आने की हिम्मत ना करे। जो वैसे भी देखा जाता है कि अगर कोई बॉक्सर, उसके सामने अगर कोई छोटा खिलाड़ी रख दिया जाए जिसको बॉक्सिंग का ज्ञान ही नहीं है, उसको खड़ा कर देंगे तो उसको देख करके हंसेगा, क्या मैं इसके साथ बॉक्सिंग करूंगा। तो पावरफुल के सामने पावरफुल चाहिए, लेकिन जब आप पावरफुल बन जाएंगे तो चाहे कैसी भी समस्या आए उस समस्या को देखते हुए, कैसी भी सिचुएशन आए उस सिचुएशन को देखते हुए कभी भी जीवन में घबराएंगे नहीं। तो इसलिए मैं इस विद्यालय की ओर से आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत के साथ साथ ये आशा करती हूँ कि इन 3 दिनों के अंदर आप केवल राज्यों का अभ्यास नहीं, राज्यों के माध्यम से परमपिता परमात्मा जो कि सर्व शक्तियों का भंडार है, जिनके द्वारा हमें सर्व शक्तियां प्राप्त होती हैं, वह सर्व शक्तियों को प्राप्त करेंगे, जीवन के अंदर हर क्षेत्र के कलाओं को सीखेंगे, खेल के बारे में अपने अंदर एबिलिटीज को डेवलप करेंगे, जीवन के अंदर और आशा की किरणें लाएंगे, आप पूरे भारत देश के अंदर ऐसे जगमगाते हुए लाइट हाउसेस बनेंगे जो सारे विश्व की निगाहें आपके ऊपर रहेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस विद्यालय के अंदर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है मन की कॉन्सेंट्रेशन। कहा भी जाता है मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार हैं। हमारे खिलाड़ियों में चलते चलते कभी मन उदास हो जाता है, कभी इंफेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि वो अपने खेल को छोड़ देना चाहते हैं, सोचते हैं इससे तो हम दूसरा काम करें। और कभी कभी हमें ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं कि वो खेल करते हुए भी इस जीवन से भी दूर हो जाना चाहते हैं। लेकिन इस संसार के अंदर हम कर्म करने के लिए आए हैं, खेल खेलने के लिए आए हैं। जिसे गीता में भगवान ने कहा है कर्म करना तुम्हारा फॉल्स है, उसके फल और उसके कर्म के रिजल्ट के ऊपर बाद में सोचना है। जब आप कर्म करते जाएंगे उसका अच्छा रिजल्ट आज नहीं तो कल अवश्य ही निकलेगा। तो इस कॉन्फ्रेंस में एक तो सेल्फ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, दूसरा परमात्मा से हम कैसे अपना संबंध जोड़ें, तीसरा हमारा माइंड सदा पावरफुल रहे, कॉन्सेंट्रेटेड रहे, और चौथी बात जब चाहे जहां चाहे खेल के क्षेत्र में हम अपने मन को इतना कॉन्सेंट्रेटेड करते हुए खेल के अंदर आगे बढ़ते जाएं। और पांचवी बात कि हम समाज में रहते हुए, समाज में परिवार में रहते हुए अपने जीवन को एक बैलेंस लीड करें और साथ साथ दूसरों को भी प्रेरणा देने के लिए हम निमित्त बने। जब आप इसके द्वारा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ अनुभव भी होंगे। और इस कॉन्फ्रेंस में केवल कॉन्फ्रेंस के लेक्चर्स नहीं, लेक्चर्स भी रहेंगे, आप सभी को साइट सीन भी कराया जाएगा। और इस विद्यालय के कई कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये ज्ञान सरोवर है, ये ज्ञान सरोवर का बहुत सुंदर प्योर एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर में आप कई अनुभूति करेंगे। और इस विद्यालय का हेडक्वार्टर जो कि नकी लेक के पास है, जिसे हम पांडव भवन कहते हैं, लेकिन वो एक बीज के रूप में है। जब विद्यालय यहाँ पर शिफ्ट किया गया तो पांडव भवन बहुत छोटा सा कॉम्प्लेक्स था, धीरे धीरे बढ़ते गए स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर भी वो बीज कितना पावरफुल है। जहाँ पर पिताश्री जी ने इतना महान कार्य किया, वह पावन भूमि, श्रेष्ठ भूमि, परमात्मा के चरित्र भूमि आपको देखने का मौका मिलेगा। और साथ ही इस विद्यालय की ओर से एक बहुत सुंदर पीस पार्क बनाया गया है, जहाँ पर हजारों की संख्या में प्लांट्स हैं और इतना सुंदर वातावरण है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ पर खास करके हमारे भाई बहने जाते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं और वहाँ मेडिटेशन एक्सपीरियंस ओरिएंटेड हॉल भी हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए वहाँ पर स्पोर्ट्स भी रहता है। आप सबके लिए वहाँ गेम्स भी रखी जाएंगी और बहुत अच्छा कार्यक्रम आप सबके लिए रहेगा। आप सभी को वहाँ पर जितना भी खेलना चाहे वो खेल सकेंगे और प्रोग्राम के बीच में आप सभी के लिए बीच बीच में ट्रैकिंग का प्रोग्राम भी रखा गया है और थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम भी रखा गया है। और आप सभी के लिए जो लेक्चर्स देने वाले भाई अथवा बहने हैं वो इन क्षेत्र में काफी ज्यादा अनुभवी हैं, जो आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराएंगे। और साथ में एक बात और कहना चाहूंगी, इस विद्यालय के संस्थापक पिताश्री जी और हमारी दादी जी हमेशा कहा करती थी, ये विद्यालय भी है, ये आपका परिवार भी है। तो अभी मैं आपका अपने ही घर में अपने भाई बहनों का इस ईश्वरीय परिवार की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी अपने ही घर में आए हैं, ये मत सोचना हम दूसरे स्थान पर आए हैं। मैं समझती जब आप आज प्रातः आए होंगे तो ऐसा अनुभव किया होगा कि हम अपने घर में आ गए, ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं? हुआ ना। अपने घर में बड़े रिलैक्स रहना, कोई भी चीज की कमी है, कोई भी कठिनाई है या किसी को कोई भोजन के बारे में कोई ऐसी सुविधा चाहिए वो आप बता सकते हैं, क्योंकि भोजन बनाने वाले हमारे यहाँ राजयोगी भाई हैं। सात्विक भोजन आपको मिलेगा। उसके लिए खिलाड़ियों के लिए भी आजकल एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है। हम कुछ समय पहले अमेरिका में थे तो वहां पर ये रिसर्च चल रही है कि सात्विक भोजन, प्योर भोजन का बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर कितना असर होता है। और कई खिलाड़ियों के ऊपर ये भी एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जिनको प्योर वेजिटेरियन फूड दिया गया है उनकी परफॉर्मेंस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है, और जिनको दूसरा दिया गया है रिजल्ट तो निकला लेकिन उसमें एग्रेसिवनेस, टेंशन, कंपटीशन, झगड़ा, ये सब बातें उनके सामने आई हैं। तो इसलिए आप सभी के लिए भोजन जो होगा वो सात्विक भोजन होगा। लेकिन एक और बात कहें, वैसे तो आप सभी स्वस्थ फ्रेश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कभी कभी क्लाइमेट चेंज के कारण बॉडी को कुछ थोड़ा सा कुछ और चाहिए होता है। मैं नहीं चाहूंगी कि आपको कोई डिस्पेंसरी में जाने की आवश्यकता रहे, या फिर भी हमारी एवर हेल्दी डिस्पेंसरी है, अगर किसी को कोई भी प्रकार की कोई चीज चाहिए तो विष्णुपुरी के पास है, वहां जा सकते हैं। लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो वैसे एक्टिव हैं और दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऐसी हमारी शुभकामना है। फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आप सभी को इन एडवांस मुबारक देती हूँ कि आप सभी भारत का नाम रोशन करें और ओलंपिक के अंदर हमारे खिलाड़ी जितना ज्यादा हो सके गोल्ड मेडल लें। और ऐसा दिन भी आएगा जैसा कि भारत का नाम था सोने की चिड़िया, मैं समझती ऐसा दिन आएगा जब गोल्डन मेडल्स की बौछार आप सबके ऊपर हो और सब तालियों से आपका स्वागत करें और आप आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों से बहुत बहुत आप सबका स्वागत है।
थैंक यू शशि दीदी जी, सच में भी हम ऐसे बन के दिखाएंगे और आशाओं का पूर्ण करेंगे। और अभी हम इस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन रहने वाले हैं, तो कॉन्फ्रेंस का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही देखने के लिए आए हैं यही नहीं है, लेकिन क्या करने जा रहे हैं। अबाउट द कॉन्फ्रेंस टू टेल अस, आई रिक्वेस्ट ब्रदर जगबीर भाई जी, जो कि ही हिमसेल्फ इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, गोल्ड मेडलिस्ट इन साइकिलिंग एंड बॉक्सिंग, and he is also the headquarters coordinator of sports wing. I request to let us know about the conference.
Om Shanti. Respected guests on the dais, sabha mein upasthit bhai aur behno, bahut hi khushi ka vishay hai ki राजयोगा ओलंपिक्स एंड स्पोर्ट्स फॉर ह्यूमैनिटी एंड ग्लोबल पीस, इस थीम पर हम एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाले समय में 2016 में ब्राजील में ओलंपिक गेम होने वाले हैं 5 से 21 अगस्त। हमने पास्ट में भी काफी काम किया है स्पोर्ट्स विंग के द्वारा, और उसकी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स विंग कर क्या रही है और इसके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी, तो आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन भी हम दिखाएंगे हाउ द स्पोर्ट्स विंग हैज परफॉर्म। एक दो मैं एक्सपीरियंस भी आपको सुनाऊंगा 2-3 मिनट का, कैसे रेसलिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। 2000 से हमने इसमें काम करना शुरू किया, और जब से मेडिटेशन एंड विजुलाइजेशन ट्रेनिंग हम स्पोर्ट्स के द्वारा नेशनल कैंप्स में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के स्टार्ट किया, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट रहा शूटिंग टीम के साथ इन बैंगलोर, उसके बाद बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रेसलिंग, तो अनेक हमने ऐसे सेशंस किए। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विंग का जो बसवराज भाई हमारे चेयरपर्सन हैं, शशि बहन नेशनल कोऑर्डिनेटर, कुलदीप बहन हैदराबाद से, शी इज ऑल्सो नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर फिजिकल एजुकेटर्स एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, आई एम एक्टिंग एज ए हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर। तो इसका जो आप ये देखेंगे कि अभी हम फोर्थ कमिंग जो हमारे इवेंट्स हैं वो हैं राजयोगा ओलंपिक्स एंड स्पोर्ट्स जो भी चल रहा है, इसके तुरंत बाद ही एक माउंट गुड़गावा में 27-28 जून को हम लोग 2 दिन की कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर नेक्स्ट शांति सरोवर 8 and 9 अगस्त इन 2015। तो ऐसे ये हमारे 3 इवेंट हैं, और हमारा ये भी प्रयास है कि शांति वन में लगभग 3000 खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक गेम्स से पहले अप्रैल या मई में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाए, तो उसकी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा फिजिकल जो एक्टिविटीज में खासकर हम एक इंटरनेशनल ट्रेल मैराथन ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको हाथ से फॉरवर्ड करो नेक्स्ट, ये माउंट आबू मैराथन सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 2013 में, फिर 14, अभी 15 में 23 मई को 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। तो हम 3-4 एजेंसीज इसमें मिलके अहमदाबाद डिस्टेंस रनर्स ग्रुप, ब्रह्मा कुमारी स्पोर्ट्स विंग, माउंट आबू स्पोर्ट्स प्रमोटिंग कमेटी, तो ये मिलकर के जो हमारा हेडक्वार्टर है पांडव भवन वहां से स्टार्ट करते हैं, और पूरा 9 किलोमीटर का माउंटेन्स के अंदर करके फिर रिटर्न वापस मॉर्निंग 6 o'clock। तो ये भी एक हमारी एक इवेंट है जो एनुअल इवेंट है, और ये आप देख रहे हैं कि जो हमने इवेंट्स किए थे अभी तक उसमें कुछ हमारे जयंती दीदी और शशि दीदी, करुणा भाई, ये सब बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मैराथनर, ये डेनमार्क से आए थे। उसके बाद ये आप पोलो ग्राउंड का सीन है जहां से एक बार हमने स्टार्ट किया था, ये माउंट आबू के सभी भाई बहने उनको इन्वॉल्व किया है इसमें, ये हमारे निर्मला दीदी, लिहाज त्रिवेदी जी। तो ऐसे करके ये कुछ मेमोरीज हैं जो माउंट आबू में मैराथन के द्वारा। फिर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमने किया बैडमिंटन में, तो साइना नेहवाल के फादर, इनके पेरेंट्स अपने बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में थे, तो 2003 में हमारे आरिफ सर उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया, तो आप देख रहे हो कि कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं बैडमिंटन के अंदर अभी भी, और थैंक्स वर्ल्ड नंबर 1 उन्होंने अचीव किया इंडिया की तरफ से, तो हम लोग उनके लिए क्लैप कर सकते हैं साइना नेहवाल के लिए। ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट था नेशनल शूटिंग टीम के साथ, जयंती दीदी आए थे लंदन से, तो उन्होंने माइंड पावर ट्रेनिंग वहां बैंगलोर में जाकर के साई सेंटर में तो सबसे पहले स्टार्ट किया। सनी थॉमस जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं तो ही इनिशिएटेड दिस ट्रेनिंग फॉर द शूटिंग टीम। तो इसके बाद रेसलिंग में आप देखेंगे, थोड़ा बैक करने, ये 2007 में जालंधर में हमारे भाई बहनों ने सुशील कुमार, तो इनको मेडिटेशन के बारे में जब इंट्रोड्यूस किया तो फिर इनके जो गुरुजी हैं वो शांतिवन में आए थे जानकी दादी के साथ, पहले वाला ये। फिर शशि दीदी को भी बवाना में बुलाया गया था इनकी एक रेसलिंग बाउट स्टार्ट करने के लिए एज ए चीफ गेस्ट। फिर आप गीता फोगाट को देख रहे हैं उसी पिक्चर में, व्हेन आई से नेक्स्ट तभी स्टार्ट करो। फिर ये हमारा ओआरसी कॉम्प्लेक्स है जहां पूरा टीम, रेसलिंग की टीम गुड़गांव में। तो नेक्स्ट ये हमारे आशा दीदी ने इनको ट्रेनिंग पूरा कराया वहां। उसके बाद नीचे आप देख रहे हो ताऊ देवीलाल स्टेडियम सोनीपत में, तो वहां हमारा एक कैंपेन निकला था, तो सुशील कुमार उसमें एज ए बीच में आप दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे रेसलिंग के अंदर भी हमारी बहुत अच्छी अभी तक ट्रेनिंग्स हुई हैं। तो अभी लेटेस्ट जब एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप होने वाली थी तो हम वहां स्टेडियम गए और जब कोचेस को बोला कि ऐसे ऐसे हम माइंड ट्रेनिंग कराते हैं तो उन्होंने कहा भी नहीं नहीं हमें आपकी ट्रेनिंग नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट हैं। तो हमारे साथ कोच थे भीम सिंह जी जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं अभी, अर्जुन अवार्डी हैं, एशिया के हाई जंप के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और इनके नाम पर एक स्टेडियम भी बनाया है गवर्नमेंट ने बरेली में, भीम स्टेडियम। तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में वहीं एक माइक उनको दे दें, नहीं वहीं सुना देंगे। तो सर का वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं योगेश्वर दत्त जी और सुशील कुमार, तो उन्होंने कहा सर भले हमारे कोच अलाउ नहीं कर रहे हैं लेकिन हम अभी आपकी ये ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। तो वो वहीं आकर के बैठ गए थे, बैठने के बाद उन्होंने फिर 1 घंटा मतलब एशियन चैंपियनशिप में जाने के पहले 1 घंटा विजुलाइजेशन किया और कैसे सर ने इनिशिएट किया। तो 2 मिनट में आप थोड़ा अनुभव सुनाएंगे भीम सिंह जी।
मेरा आप सभी को नमस्कार। जैसे भाई जगवीर जी ने बताया आज हम ब्रह्म कुमारी बाबा जी के आश्रम में आए हुए हैं, सभी जो दादी और परमपिता जो बाबा जी हैं उनको सब नमस्कार करते हैं। जगवीर भाई ने मेरे को तकरीबन जो है ना वो दिल्ली जाते हैं तो हमेशा मेरे को बुला लेते हैं, तो हम बैडमिंटन जैसे नेहवाल के पास काफी क्लोज बहुत ही जो उनके साथ रहे हैं और मेडिटेशन की काफी ट्रेनिंग जगवीर भाई ने दी है। और दूसरे जो गेम जो अभी रेसलिंग की जो बता रहे हैं, अभी हम जैसे ही एशियन गेम होने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था तो योगेश्वर दत्त एशियन गेम में जा रहे थे, सुशील कुमार जी नहीं जा रहे थे, तो जगवीर भाई जी ने जैसे उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास सब कुछ है, तो लेकिन फिर हम जो डायरेक्ट जो है ना मतलब योगेश्वर जी के पास गए, बोला जी मैं चाहता हूं कि आप मेरे को ट्रेनिंग दें। और 2 दिन जो है ना भाई जगवीर ने उनको ऐसी माइंड पावर जो ट्रेनिंग दी कि सिर्फ जो है ना 28 साल बाद रेसलिंग के अंदर गोल्ड मेडल लेने वाला हमारे इस एशियन गेम में योगेश्वर दत्त जी ही थे। वैसे ओलंपिक में आपको पता है योगेश्वर जो है ना ब्रॉन्ज मेडल ले चुके हैं, सुशील कुमार 2 बार मेडल ले चुके हैं, तो इनके बहुत ही वो जो है ना एहसानमंद भी मानते हैं अपने आप को कि आपने हमारे को पावर माइंड की जो एक्सरसाइज दी है जो करवाया है उसकी बदौलत हम जो है ना आपके बहुत आभारी हैं और शुक्रगुजार हैं, और हम जो है इस मेडल को भी बल्कि आपके ही मतलब उससे हमें मिला है। तो यही नहीं गेम, बाकी जो बॉक्सिंग के प्लेयर हैं ये आप शायद नहीं जानते, मैं जो है 82 में भी एशियन गेम में कोच था, जो हमारे यहां जो है ना 82 के गेम हुए थे उस टाइम हम जो है मेडिटेशन और माइंड पावर की एक्सरसाइज के लिए बाहर से बुलाते थे लोगों, शायद बहुत से लोग जो है ना उस टाइम का आज से समझो 30 साल पहले जाकर देखें तो वाकई जो है उस टाइम हम बहुत पीछे थे, लेकिन उस टाइम ऐसा था कि हम कैंप भी पूरे साल नहीं लगा पाते थे। 82 सिर्फ जो है ऐसा था जहां पूरे साल कैंप चले थे, उसके बाद कंटिन्यू अभी चल ही रहे हैं। उससे पहले हम सिंथेटिक ट्रैक, बैडमिंटन के कोर्ट,
थोड़ा शॉर्ट करेंगे
तो अभी जो है ना हम उस लेवल में पहुंच गए हैं। और मैं जैसे आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूं, बहुत जगह ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटी नहीं है, तब भी आप सारे देश से आए हैं। जैसे कि एक लव की मिसाल देते हैं कि उसने गुरु की प्रतिमा को भगवान मान के और अपने आप ट्रेनिंग की और वो सर्वश्रेष्ठ धनुष बना। इसी तरह कोई खिलाड़ी भी आपकी प्रेरणा से इस तरह का करिश्मा कर सके, उसके लिए हम सभी जो है ना आप सभी भाइयों का धन्यवाद देंगे।
थैंक यू सर। हमारे भीम सिंह जी ऑल इंडिया जो अर्जुन अवार्डीज हैं उनके आई थिंक प्रेसिडेंट भी हैं यूनियन के, आपने हरियाणा गवर्नमेंट में अर्जुन अवार्डीज के लिए सीएम सर से मिलकर के बहुत सारी स्कीम चलवाई हैं, तो एक बहुत बड़ी इनकी संघर्ष है। कोई भी खिलाड़ी जो कुछ जिसको एड नहीं मिलती है गवर्नमेंट से तो उसके लिए आउट ऑफ वे भी जा करके उनको मदद करते हैं, तो ये आपका बहुत बहुत थैंक्स। ये आप देख रहे हैं रेसलिंग का। उसके बाद बॉक्सिंग टीम में शशि दीदी को वर्ल्ड बॉक्सिंग वुमेन चैंपियनशिप में एज ए गेस्ट बुलाया था, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो सभी को गिफ्ट भी दे रहे हैं, बाद में मेडिटेशन का सेशन भी कराया। और उस समय सुरेश कलवाड़ी जी थे और जो भी गेस्ट थे सभी ने बहुत आदर सम्मान से स्पोर्ट्स विंग का वहां स्वागत किया। नेक्स्ट आप देखेंगे क्रिकेट टीम के लिए हमारे रमेश माने जी जो कि क्रिकेट टीम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें चांस दिया 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में। तो ये जो रूम आप देख रहे हो यहां बहने आती थी और इसी रूम के अंदर हम लोगों ने उनको काउंसलिंग करके जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती थी, बैटिंग से पहले नर्वस हो जाते थे या उनको कभी ज्यादा गुस्सा आता था या उनको ऐसे डिप्रेशन सा फील होता था, तो यहां पांच पांच दस दस मिनट हर इंडिविजुअल प्लेयर्स को ट्रेनिंग दिया और बहुत अच्छा आपने देखा कि परफॉर्मेंस रहा 2011 वर्ल्ड कप में। एंड फिर 10 दिन तक टीम के साथ जाना हुआ दिल्ली तक भी और एक ऐसी सेवाएं गुप्त रीति से मतलब हमें करने का मौका मिला। इसके बाद आप देख रहे हो हमारे जयंती दीदी उनको राखी बांध रहे हैं, गायत्री बहन और जयश्री बहन ये हर तरह से अपने पुरुषार्थ करते हैं कि कैसे भी मेडिटेशन और विजुलाइजेशन की ट्रेनिंग हर गेम तक ये जाए, तो क्रिकेट में इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हमें अभी तक मिल रहे हैं। और अभी रिसेंटली नेशनल बॉडी बिल्डिंग टीम के साथ प्रेमचंद डेगरा जी एज ए माइंड ट्रेनर हमें लेके गए, तो हमारी बॉडी बिल्डिंग की टीम एक महीने पहले एशिया में सेकंड भी नहीं आ रही थी, लेकिन जब हम वहां 10 दिन उनके साथ रहे और सिंपल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं था, उस ट्रेनिंग के बाद इनके वीडियो क्लिप्स भी हमारे पास हैं, तो दो तो वर्ल्ड चैंपियन बने राजेंद्रन मणि और अंकुर शर्मा यमुनानगर से और एक ब्रॉन्ज मेडल नायर फ्रॉम नेवी, तो इनको एक बहुत अच्छी अचीवमेंट्स मिली, ये भी एक हमारे लिए बहुत एक चांस था। उसके बाद माउंट एवरेस्ट में 16 एवरेस्टर्स गए थे, तो इन्होंने कहा कि हमें वहीं आकर के आप ट्रेनिंग दीजिए, तो इनका 13,000 फीट की हाइट में तवांग एक जगह है, तो वहां 10 दिन का कैंप लगाया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि अंशु जैन सप्पा बींग ए मदर ऑफ टू चिल्ड्रन आई थिंक फोर्थ टाइम शी इज अटेम्प्टिंग नाउ, तो इन्होंने पूरे 16 के 16 एवरेस्टर्स ने समिट कंप्लीट किया, अभी फोर्थ टाइम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए शी इज ऑन द वे। ये आप देख रहे हैं बीजिंग नेक्स्ट, ये बीजिंग ओलंपिक गेम्स में भी हमें बीच बीच में उन्होंने बॉक्सिंग साइकिलिंग रेसलिंग अपने लेवल से इन्वॉल्व किया था, तो वहीं के कुछ स्नैप्स हैं जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट ये आप देख रहे हो सिंगापुर यूथ ओलंपिक गेम्स में शशि दीदी और हमें एज ए गेस्ट वहां बुलाया था, तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के जो हमारे आईओसी के जो प्रेसिडेंट हैं जैक्स रॉग और सर्जेई बुबका ये सब अलग अलग आपको स्नैप्स देख रहे हैं, तो वहां भी हमें सेवा करने का बहुत अच्छा चांस मिला। ये अभी यूनाइटेड नेशंस में एक कॉन्फ्रेंस थी हाउ टू ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स, तो इसमें भी 5 to 10 minutes प्रेजेंटेशन का एक गोल्डन चांस मिला था स्विट्जरलैंड में, तो ये भी स्पोर्ट्स विंग की एक काफी अच्छी अचीवमेंट रही है। ये आप देख रहे हो रशिया के अंदर पीस एंड स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ब्रह्मा कुमारीज को वो हमेशा जहां पे भी इनकी कॉन्फ्रेंस होती है जिस भी कंट्री में, तो हमारे फैकल्टी मेंबर्स को ये इनवाइट करते हैं। तो ऐसे करके ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छी सेवाएं हो रही हैं। अभी आप ये देखेंगे ब्राजील रियो ओलंपिक गेम्स, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है, 3 एग्जीक्यूटिव कमेटी, 1 साल के लिए प्लानिंग कमेटी, वर्किंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी। तो हमारे बीच में कंट्री रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी के नीरज कुमार मेहरा जी, उनका बहुत बड़ा एक इसमें योगदान है, वो भी आपको बताएंगे, स्टेज पे बैठे हुए हैं। और हमारा ये है प्रयास कि इसको ज्यादा से ज्यादा, मतलब हम नेशनल हर गेम के पास ये ट्रेनिंग लेकर के जाएं और उनको इसका लाभ पहुंचाएं। अभी लास्ट में मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, हमारी एक वेबसाइट है, वैसे तो वो पहले बनी हुई थी लेकिन उसको अपडेट करने के लिए दिन रात मेहनत किया हमारे किम बहन जी जो लाइफ मेंबर हैं स्पोर्ट्स विंग के, और आपने कैंपेन में भी काफी हमें आइडियाज दिए, तो वो आपको 5 मिनट के लिए अंदर ही इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे कि कैसे वेबसाइट काम कर रही है। इससे आप माइंड पावर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर में हमारे क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो सब इसमें आप देखेंगे। तो ये वेबसाइट के 2-3 स्नैप्स आपको दिखाएंगे। इतना ही कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। ओवर टू किम बहन। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी का स्वागत है। लाइट्स ऑफ प्लीज। वेलकम टू ब्रह्मा कुमारी स्पोर्ट्स विंग वेबसाइट। आप www.sportswing.org लॉगिन करके इस वेबसाइट को देख सकते हैं। सबसे पहले आपका ये होम पेज है जिसमें हमारे जगबीर भाई और सबसे पहले शशि बहन जी और उनके साथ इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, और हमारे जयंती बहन जी जो बैट, जिनको सचिन तेंदुलकर जी बैट गिफ्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से हमारे प्लेयर्स हैं, जैसे ये आर्चरी में ये सिस्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। दिस इज द होम पेज, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये लुक एंड फील है वेबसाइट का। आप डायरेक्ट फोटो गैलरी में क्लिक करके जा सकते हैं, और साथ में आप देखिए आर्चरी, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, इस तरह से आप स्क्रॉल करेंगे, चेस, तो जिन जिन स्पोर्ट्स में ब्रह्मा कुमारीज ने पार्टिसिपेट किया है या ब्रह्मा कुमारीज के बैनर के अंडर पार्टिसिपेशन हुआ है, उन सबकी गैलरीज को आप डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। उसी के साथ नीचे हमारे मेन कैंपस के जो प्रिमाइसेस हैं, पांडव भवन, शांतिवन और ज्ञान सरोवर जहां पर आप सभी बैठे हुए हैं, उसका थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहां से भी आप हमारी न्यूज, इवेंट्स और ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो होम पेज पे ही आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अभी हम अबाउट अस को देखेंगे। अबाउट अस में सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी उसका इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री। इसमें हमारे फाउंडिंग फादर पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा, इनके जीवन के बारे में संक्षेप में दिया गया है, और साथ ही हमारी संचालिका मातेश्वरी जगदम्बा, उनके जीवन के बारे में भी और उनकी जर्नी के बारे में संक्षेप में दिया गया है, और साथ ही हमारी पूर्व मुख्य प्रशासिका अपना प्रकाशमणि दादी जी के बारे में भी जानकारी दी गई है। अबाउट अस में ही मैं चाहूंगी कि ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी मम्मा को देखकर सभी तालियां बजाएं। बीके एकेडमी ब्रह्मा कुमारी इसके जो मेन परिसर है, ये हमारा शांतिवन है जिसे आप आबू रोड में देख सकते हैं, अभी आप माउंट आबू में बैठे हैं। उसके नीचे पांडव भवन, जैसा कि शशि दीदी जी ने बताया, जहां पर हमारे ब्रह्मा बाबा ने उनके यादगार है, जिसे हम चार धाम यात्रा भी बोलते हैं, वो आप जरूर कीजिएगा। उसके नीचे ज्ञान सरोवर अकेडमी, साथ ही अबाउट अस में राजयोग में एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हमारी चीफ बॉडीज हैं, दादी जानकी, देखिए किस तरह से वो हमारे बीच में उमंग उत्साह से खड़ी हैं। वेलकम दादी जानकी। ये हमारे चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे, दादी हृदय मोहिनी जी, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, और दादी रतन मोहिनी जी, ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। वी ऑल वेलकम थ्री ऑफ देम। साथ ही अबाउट अस में राज योगा मेडिटेशन। भाइयों और बहनों, हमारा जो ब्रह्मा कुमारीज का प्राइमरी टीचिंग है, यानी जिसके बेसिस पर हमारे सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं, जो हमारा फाउंडेशन है, जिसके आधार पर आपको माइंड पावर ट्रेनिंग दी जाती है, वो है राज योगा मेडिटेशन टेक्निक, जिसे हमारे प्रजापिता ब्रह्मा जी ने शुरू किया था। इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड, अबाउट अस में हमारे स्पिरिचुअल कोर्सेज हैं, और बीकेस एट द यूएन, डायरेक्टली आप बीकेस एट द यूएन में आ जाइए। अभी आप 3 दिन के सेशन में काफी कोर्सेज सेमिनार्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। विभिन्न प्रकार के यहां पर आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, पॉजिटिव थिंकिंग। ओके, विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, विंग्स एडमिनिस्ट्रेशन में स्पोर्ट्स विंग, यहां से आप स्पोर्ट्स विंग की जानकारी ले सकते हैं। फोटो गैलरीज हमने आपको होम पेज पे दिखा दी हैं, वहां से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। इवेंट्स में आप अपकमिंग इवेंट्स, यानी जो हमारे ओलंपिक्स होने वाले हैं 2016 में, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट अस को आप दिखाएंगे। कॉन्टैक्ट अस से आप हमारे विभिन्न परिसर की और हमारे कंसर्न पर्सन की कॉन्टैक्ट नंबर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
थैंक यू जगबीर भाई जी एंड किम बेन, बहुत अच्छा सा अवलोकन कराए हम सभी को। अभी हमारे बीच में जो कि ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी पधारे हैं, उनको हम सब करतल ध्वनि से स्वागत भी करते हैं, और ब्रह्मा कुमारी बहने बैडजेस और फ्लावर्स से उनको वेलकम भी करेंगे। और अभी हमारे बीच में डिवाइन सिस्टर अमर ज्योति सिंह जी भी है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से पधारे हैं, वो भी हम सबको ग्रीटिंग्स देंगे। अमर ज्योति सिंह जी,
सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी स्पोर्ट्स विंग ऑफ राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे यहां पर आमंत्रित किया। राजयोगा फाउंडेशन ने बहुत ही उचित समय पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जबकि 2016 में रियो में ओलंपिक्स आयोजित होने वाले हैं। हम में से यहां पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के बाद जो भी प्लेयर्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसको किस तरह से मेंटली और फिजिकली ट्रेन करना है, इसमें वो अपना योगदान दे पाएगा। ओलंपिक्स का जो इतिहास है, या जिस तरह से ओलंपिक्स चला आ रहा है, वे हार या जीत के लिए नहीं है। ओलंपिक्स में जितनी भी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, वो हार या जीत के लिए नहीं खेली जाती। ओलंपिक्स के माध्यम से पूरी दुनिया में मानवता, भाईचारे, शांति व संयम का संदेश दिया जाता है। ओलंपिक्स में तकरीबन 150 देश पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा आपको विदित होगा कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन के लिए एक बेंचमार्क होता है जिसको सभी प्लेयर्स को क्लियर करना होता है, तो जो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं वो बेंचमार्क क्लियर करते हैं, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो ओलंपिक्स का उद्देश्य है कि सबको साथ लेके चलना, पूरी दुनिया को एक जगह पर इकट्ठा करना, बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से या और वजहों से कई एथलीट्स उन बेंचमार्क को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो जो ओलंपिक्स कमेटी है उसने एक कोटा सिस्टम रखा है और वो उस कोटा सिस्टम के अंदर उन देशों के एथलीट्स को किसी न किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने के अलाउ करते हैं और इस माध्यम से वो सभी देशों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। जहां तक भारतीय खेलों का सवाल है, भारत ने पिछले 15 वर्षों में खेलों में बहुत उन्नति की है। जैसा आपको विदित है, ओलंपिक ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2014, 2010 और एशियन गेम्स 2010 में जो भारत की मेडल टैली थी वो अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ मेडल टैली थी। 2014 में भी एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे प्लेयर्स ने हमें गौरवान्वित किया, दे मेड प्राउड ऑफ अस। पिछले ओलंपिक्स में हमें 6 पदक प्राप्त हुए। अब ये सवाल कि 120 करोड़ की जनता में केवल 6 पदक, लेकिन इसके और पक्ष भी हैं। हम ये सोचें कि 120 करोड़ की जनता में कितने लोग खेलना अफोर्ड कर सकते हैं या कितने लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के लिए। तो हम इस मुद्दे को यहीं छोड़ देते हैं, 6 मेडल भी हम लोगों के लिए बहुत हैं। अब बात इस आयोजन की तैयारी की। ओलंपिक्स 2016 की तैयारी के लिए ही ये आयोजन किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण अपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, जहां पर मैं पोस्टेड हूं अभी, सभी एलीट एथलीट्स को फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। समय के साथ साथ हम लोगों ने यह रियलाइज किया कि प्लेयर्स को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग भी अनिवार्य है। फिजिकल ट्रेनिंग से बच्चा खेलों में तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर मेंटल ट्रेनिंग नहीं है तो जब वो पार्टिसिपेशन के लिए जाता है तो अपने जो उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको देख के डर जाना या नए माहौल में जाके डर जाना या ये फीलिंग आ जाना कि शायद मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अगर मेंटल ट्रेनिंग रहती है तो वो इन सभी डरों पर वो विजय प्राप्त कर सकता है और फिजिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। भारतीय खेल प्राधिकरण इन खिलाड़ियों को और भी ट्रेनिंग देता है, जैसे बायो मैकेनिक्स में टेस्ट कैरी आउट करता है, साइकोलॉजिकली फिजिकल सॉरी एंथ्रोपोमेट्री में, और उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इन सभी तैयारियों को देखते हुए हमें ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन हमारे जो नेशनल कैंपस हैं उनके लिए मेडिटेशन सेशन एंड विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जो कि इन खिलाड़ियों को मेंटली स्ट्रांग होकर ओलंपिक्स में या किसी भी खेल में पार्टिसिपेशन के लिए तैयार करता है। खिलाड़ी अपने डर पर, अपने कॉम्प्लेक्सेस पर कैसे विजय प्राप्त करें, ये मेडिटेशन उनकी हेल्प करता है। वह सबसे अहम, शायद मैं भी ये बात नहीं जानती थी, कि कैसे मेंटल स्टेबिलिटी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। तो ये सभी बातें जब हमारे प्लेयर्स अपने जीवन में ढालते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंप्स सभी के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आते हैं, जो कि संतुलित जीवन जीने में हमारी सहायता करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी जो यहां उपस्थित हैं और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लेके आ पाएंगे, और केवल अपने अंदर ही नहीं, हमारे आसपास जितने लोग हैं शायद हम उनकी भी मदद कर पाएं एक संतुलित जीवन जीने के लिए। मैं आयोजकों को पुनः एक बार धन्यवाद देती हूं, इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई भी देती हूं। धन्यवाद।
थैंक यू सिस्टर। हमारे बीच में डिवाइन ब्रदर नीरज कुमार मेहरा जी भी है,
जो इंडिया रिप्रेजेंटेटिव है इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन में, वो भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए ग्रीटिंग्स देंगे।
Good evening to all of you. First thanks goes to Bhai Jagbir Singh and second to Madam Shashi for collaboration of this word Olympism with this conference. The word which is a big word for the people who are in sports but less heard in India. 2010 ki baat hai, Commonwealth Games ke andar जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी कॉमनवेल्थ गेम्स को अच्छा कराने के लिए। ठीक उसी समय पूरे विश्व भर से कुछ 25 नुमाइंदे चुने गए। भाग्य अच्छा था, देश के लिए कुछ करना था। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा होते हुए एक मौका मिला भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ऐसे कोर्स में जो अपने आप में एक यूनिक कोर्स था, जिस कोर्स का नाम मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन ओलंपिक एजुकेशन, ओलंपिक स्टडीज, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलंपिक इवेंट्स। और सबसे अच्छी बात कि वहां से जहां से ओलंपिक गेम शुरू हुई, ओलंपिया एक ऐसी धरती जिसने ओलंपिक गेम्स को जन्म दिया। एथेंस ग्रीस के अंदर 1961 में इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी की स्थापना की गई। जो एक सपना था उस शख्सियत का जिसने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को विश्वभर में शुरू किया। फ्रांस के एक टीचर बैरन टीरे दी कुबर्टिन, जिन्होंने 1936 में इस बात को बर्लिन ओलंपिक में रखा और ग्रीक की हेलेनिक ओलंपिक कमेटी ने इसको एक्सेप्ट किया कि हमें कुछ करना चाहिए और एक ऐसे एकेडमी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ 1961 में, जहां हर साल विश्व भर से लोगों को इनवाइट किया जाता है और उन्हें ओलंपिज्म के ऊपर एजुकेट किया जाता है। मुझे खास निर्देश प्राप्त हुए हैं कि मुझे 5 मिनट से अधिक समय नहीं लेना है, तो मैं उसके लिए बाध्य हूं। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां दो फिलॉसफीज की बात है, एक राजयोग मेडिटेशन, राजयोग फिलॉसफी और दूसरी ओलंपिज्म। एक ही फिलॉसफी के ऊपर बोलना शुरू करें तो शायद बहुत टाइम लग जाए, लेकिन यहां दो फिलॉसफीज के ऊपर बात है तो बहुत मुश्किल है सभी को इस बारे में इस छोटे से सेशन के अंदर एजुकेट करना। इट्स एन एफर्ट फ्रॉम अस टू ब्रिंग ओलंपिज्म क्लोज टू यू। इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गॉट एजुकेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी। It's a network of Olympians, network of educators, network of sports journalists, network of national Olympic committees. हम ओलंपिक तो जानते हैं लेकिन ओलंपिक कहां से शुरू हुआ है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, कभी नहीं जानते और ना ही जानना चाहते हैं, क्योंकि हम परफॉर्मेंस पे रहते हैं हमेशा। वी आर ऑलवेज रेडी टू गेट मेडल्स। क्या मेडल्स ही चाहिए हमें? जब मेडल्स आते हैं तो साथ में डोपिंग आती है। फिर अब डोपिंग आती है तो डोपिंग को कैसे दूर किया जाए? यहां एजुकेशन है। जैसे राजयोग मेडिटेशन एक कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाता है, अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स यूज करता है, उसी तरह से ओलंपिज्म अपने आप में एक ऐसी फिलोसफिकल अप्रोच है जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपको एजुकेट करता है। यहां एजुकेशन आपकी ट्रूथ जिसकी संस्था है इंटरनेशनल ओलंपिक ट्रूथ सेंटर पीस एंड स्पोर्ट। जगवीर भाई ने बताया नेशनल ओलंपिक कमेटीज, नेशनल ओलंपिक एकेडमीज, ये बात सिर्फ 3 महीने पहले की है जब जगवीर भाई और हमारी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर हमने कोशिश की कि किस तरह से ओलंपिज्म को जोड़ा जाए इस कॉन्फ्रेंस से। मेरी दरख्वास्त थी मैडम शशि से और जगवीर भाई से कि किसी तरह से ओलंपिज्म को मौका दिया जाए लोगों के सामने आने का। यहां ओलंपिज्म है एजुकेशन, ओलंपिक की एजुकेशन। हमारे एथलीट्स खेलते तो हैं लेकिन क्या एजुकेट हो पाते हैं? क्या हमारी ओलंपिक वैल्यूज के अंदर एजुकेशन मिली है उन्हें? रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप एंड एक्सीलेंस, 3 ओलंपिक वैल्यूज। विश्व भर में अगर देखें तो देर आर सीरीज ऑफ इवेंट विच आर हैपनिंग। भारत में तो अभी शुरुआत है, देखना यह है कि कहां तक हम इस शुरुआत को लेकर जाएंगे। जब बात करते हैं हम 2016 की तो देर आर सीरीज ऑफ इवेंट्स विच आर प्लान। गुड़गांव का इवेंट जिसका थीम एक्सीलेंस है, यह भी उसी सीरीज के अंदर एक नेक्स्ट स्टेप है हमारा। देर आर डिफरेंट प्रपोजल्स विच नीड टू बी वर्क आउट एंड वी नीड कॉपरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खेलते ही रहें, खेले भी, एजुकेट भी हों और एजुकेट करें भी, तब हम एक ऐसे सक्षम भारत का निर्माण कर पाएंगे, एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण कर पाएंगे जो ओलंपिक गेम्स जैसी बड़ी गेम को बीट कर पाएगा। अन्यथा हमारे लिए ओलंपिक बीट करना हमेशा मुश्किल है, क्योंकि ओलंपिक गेम्स बीट करने के लिए वहां के लोगों का अपना रिस्पांस एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। वहां के लोग क्या चाहते हैं उस देश के, उस सिटी के, और ये राजयोग मेडिटेशन का, राजयोग फाउंडेशन का एक एफर्ट काफी सराहनीय है जिसमें ओलंपिज्म को इंक्लूड किया गया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में एजुकेट किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो 204 नेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ विश्व भर में काम करती है, इसी तरह से इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी 150 कंट्रीज के अंदर ओलंपिक एजुकेशन के लिए काम करती है। यहां बात ना सिर्फ खेल की बल्कि खेलों के द्वारा एक शिक्षा की भी है। ज्यादा समय ना लेते हुए वी विल सी दैट इन दीज 3-4 डेज हाउ वी कैन गेट इंस्पायर्ड, हाउ वी कैन गेट इंस्पायर्ड विद दीज 2 फिलोसफीज, वन इज राजयोग एंड द अदर वन इज ओलंपिज्म। आई विल कंक्लूड माय दिस सेशन with just one line, let's celebrate true spirit of not only Olympism, Raj Yoga also. Thank you.
Thank you, Neeraj Bhai Ji. अभी हमारे बीच में Honorable Justice Ishwaraya Ji भी है। ये हमारा सौभाग्य है भाई साहब आज यहाँ पर पधारे हैं, जो कि फॉर्मर जस्टिस भी है और चेयरमैन फॉर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस दिल्ली से पधारे हैं। 16 इयर्स से राजयोग मेडिटेशन कर रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। और भाई साहब जब एपी हाईकोर्ट में जस्टिस के रूप में रहते थे तब 69,000 केसेस को जो पेंडिंग था उसको क्लियर कर दिए है, और उनका क्षमता है जो जजमेंट का किसी भी प्रभाव में या दबाव में ना आके बहुत सारे केसेस ऐसे डील किए हैं, तो वो भी कैसे ये सब डील कर रही है, राजयोग से कैसे प्रेरणा ले रही है, ये भी हमारे सामने रखेंगे जस्टिस ईश्वरैया जी।
ओम शांति। आज के अपने इतने अच्छे स्पोर्ट्स विंग का इसमें चीफ अपने दीदी डॉक्टर बी के निर्मला दीदी जी, बसवराज भाई जी, अपने बलिष्ठ बहन बी के शशि बहन जी, जगवीर भाई, अमर ज्योति सिंह सिस्टर, नीरज कुमार मेहरा, राजेश चौहान, मेहर चंद और अपने सब भाई बहने, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक, बिकॉज वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू कम एट द गॉड्स प्लेस, ए सेरीन एटमॉस्फेयर ऑफ द ज्ञान सरोवर, द एकेडमी फॉर द बेटर वर्ल्ड एट द अबू हिल्स. Because the moment you have stepped in, I think your enthusiasm has been, would have been increased, and this is the place to get the motivation. Because there are several wings of the Brahma Kumaris, and one of the wing is the sports wing. Like that, there is judicial wing, administrative wing, political wing, and medical wing also there. Just like you, the spiritual brothers, I have also come 16 years back here. I got motivation from here. Then I was able to dispose of 69,000 cases without fear or favor or any ill will, or without influenced by any kind of the external considerations. Because every successful sportsman, every successful man, his success depend upon how righteous he is. It depends upon his power of concentration, his spiritual power, his neutrality, and his ultimate aim and object. Because why the everybody will not become the sports person? Because the talent is not equal to each and everybody. But people who gets the medals and gets the ultimate the placement also, but without conduct and without moral and without ethic, whole thing goes waste. We have come across several things, even from I belong to Hyderabad, and you know one of the cricket player who achieved number one position, but thereafter, as brother said, then he involved, then his name is no more now. And similar things, recently you have come across what happened in the cricket, how they have been debarred and how they have spoiled their life. Not only that, they have to face the criminal cases also. So what is the aims and objects? Sister said about the aims and objects, and all the previous speakers have motivated you. So ultimately, after all, life is actually we have to play our life in a good spirit. These sports are in separate, in specified wings and the fields. But merely because you lose a game, you are losing nothing. You say when Muhammad Ghori have attacked India, 17 times, 16 times he have been defeated. But 17th time he has succeeded. So similarly, even if you win or lose, but never lose your heart, never lose your hope, and never lose your this ultimate aim, because it's a game of the unity, harmony, and a skilled game. Therefore, now there should not be any apne bolte na reach nahi karna, race karna, kyunki we should bring about, it's only motivation for the younger generation and entire the world people to be a sportsman, so that they will maintain their good health and wealth, happiness. But merely losers also should feel that they are successful, because that participants and winners also successful. But I tell you, brother and sisters, because people, however highest post positions are, becomes the number one personality in any field of the sports. But ultimately, if you see their life, if they don't lead a happy, a peaceful, a contented, a satisfied life, then it's of no use at all, however skilled person you are. Therefore, nothing is impossible in your life. To achieve the target, and to reach the target and to become number one in the world. Therefore, why do you lose any game? Because the other side, the opposite man is more skilled person, more powerful person. But you are not inferior to him. But you increase your willpower and you aim how to object it and how to defeat him without any kind of the negative attitude towards him. But for that, spiritual empowerment is required. Spiritual knowledge is required. Because when you succeed, you think that you have succeeded. You means not this body, but something inside the body that is called the spirit, that is called energy, that is called consciousness, that is called Atman. So when you feel that you are energy, you are a consciousness, then you will not get any kind of the tiredness, any strain or any dissatisfaction. Therefore, you should be a neutral and you should see that you are just, your body is in, your instrument to play your role well. So when that's how I played my role as a 14 years as a high court judge, when I was disposed, till today I didn't know how I have disposed of, but I used to become a neutral, but I am only the soul, I am the representative of the supreme consciousness, supreme being, supreme this power. Therefore, if you play this role with that consciousness, and nothing is impossible for you, you can achieve everything. Really, in the next Olympic Games in 2016, you can bring laurels to the India and you can be most successful and persons in your sports field. Therefore, my request is, you are very fortunate to be here for the 3 days, and 3 days please attend all the classes. Beautiful, beautiful sessions are there. The excellent sessions are there. The sessions are these power, the mind power to change the performance. Okay, what is the mind power? Nobody knows about the mind power. And they will motivate also. Then you will not feel any stress. And the science of the meditation, knowing the supreme power, steps of success, holistic fitness, and nutrition and diet. And just now they have said, because every human being is so ignorant, however learned they are, however high post positions and these learned people are, they doesn't know who are there. I am speaking from here. Who is speaking? Maybe I have performed my role as a high court judge. Now, presently I am a national commission for the backward classes, government of India. But who is playing this role? I am playing. As long as some energy is there, I will be speaking. Consciousness is there, I will be speaking. Speaking through my mouth, seeing with my eyes, hearing my ears. The fundamental thing is, the people doesn't know who they are. Who is playing? The inside conscious is playing. If that conscious is not there, then you will become nothing. Therefore, if you concentrate on your conscious, then conscious power, the spiritual power is immense. You can't assess what is the power of that consciousness. Because nothing is impossible in this world, because the conscious is so powerful. After all, we made the atom bomb. Who is made? The Atma made. The conscious made. The all excellent people who have achieved world number one icons, it's because of their concentration power. Because of their skill. So that's how you are very fortunate to come here and empower yourself and you get this kind of the spiritual knowledge, and you will be successful in the mind as the body. Therefore, body is not the successful thing, but if your mind becomes a successful the source, then automatically your body, it will be molded, and you can make use of your body and for anything or for any purpose. Thank you for giving me this opportunity.
Thank you, Ishare Bhaiji. Abhi main request karti hoon, Divine Brother Rajesh Chauhan ji, jo International
हॉकी प्लेयर दिल्ली से पधारे हैं, वो भी अपना ग्रीटिंग्स प्रेजेंट करेंगे।
आदरणीय दीदी जी, शशि जी, भाई जगबीर जी, स्टेज पे बैठे हुए सभी मेरे रिस्पेक्टेड बुजुर्गों, अर्जुन भीम सिंह जी और सभी मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी पूरी जिंदगी खेल में निकलती है और जितनी मीठी बातें हम भाइयों से और बहनों से सुन रहे हैं, दीदी जी से सुन रहे हैं, शायद उतनी मीठे तरीके से हम ना बता पाएं। लेकिन मुझे जगबीर जी ने एक टॉपिक दिया है कि मन की शक्ति, कि कैसे हम अपनी मन को इतना सख्त बनाएं कि हम खेलों में भी सोने की चिड़िया हों। तो मैं खुशकिस्मत मानता हूं अपने आप को कि मैं भारत में पैदा हुआ और उस खेल को खेला जो विश्व में आज अगर किसी भी खेल में अगर शक्ति का अगर प्रतीक अगर कोई माना जाता है तो वो हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी। शायद मुझे भी कुछ दिन कुछ सालों पहले ही ये पता चला, उनसे पहले मेरे भी अगर प्रिय अगर प्लेयर होते थे तो वो सचिन तेंदुलकर होते थे, लेकिन जब मैंने ध्यानचंद जी के बारे में पढ़ा तो पता चला कि हम अज्ञानी हैं। और मैं ही नहीं, आज भी हमारा देश, हमारे देश में रहने वाले बहुत सारे लोग अज्ञानी हैं कि जो उनको नहीं, उनके बारे में नहीं जानते हैं। सभी कहते हैं उनका ध्यानचंद नाम कैसे पड़ा, उनका ध्यानचंद नाम, उनका असली जो नाम था उनका ध्यान सिंह नाम था, और जो चांद उनको बोलते हैं वो उनके दोस्तों ने, विश्व में अलग अलग जितने चैंपियन हुए हैं उन्होंने, जब वो रात में प्रैक्टिस करते थे, चांद की चांदनी में प्रैक्टिस करते थे, और जो शक्ति उनके अंदर है दूसरों ने, जो उनके विरोधी होते थे, जब उनकी लगन देख के, उनकी शक्ति देख के, सब ने उनका नाम उनको पुकारने लगे चांद, तो तब से उनका नाम ध्यानचंद पड़ा। तो जैसा बहन जी ने बताया, भाई जगबीर जी ने बताया कि मैं अपने अंदर भी एक कमी महसूस करता हूं कि क्यों नहीं मैं आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले ब्रह्म कुमारी जी से या यहां से जुड़ा, कि जो शक्ति की बात होती है वो यहां हमें मिल सकती है, हम रहते हैं दिल्ली में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं तो वो शक्ति, वो कंसंट्रेशन हमें वहां नहीं मिल सकता। एक और बात, हमारे रिस्पेक्टेड जो पहले बोल रहे थे, मैडम भी बोल रही थी कि हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम सब नहीं खेल सकते या भारत को सब नहीं जिता सकते, हमारे अंदर सबके अंदर वो विल पावर है, वो सारी चीजें भगवान ने दी हैं, चाहे वो किसी भी रूप में सक्षम दिखते हैं या असक्षम दिखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो पैरालंपिक जो खेलते हैं, जो करते हैं, वो कैसी कैसी कठिनाइयां सहते हुए भी वो गोल्ड मेडल, वो विजेता बनते हैं। जितना हमें सब कुछ मिला, हम भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद हम वो चीजें नहीं जीत पाते हैं जो हमें जीतना चाहिए। तो अगर आप लोगों के मन मजबूत हैं कि मैंने ये करना है तो हम सब वो काम कर सकते हैं, चाहे वो हमारे जो भी जो शरीर है उसमें कोई कमी दिखती होगी किसी को, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो सबसे बड़ी, संसार में सबसे बड़ा शक्ति है तो वो दिमाग है, और वो दिमाग अगर आप लोगों ने एक 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 चीज पे अगर लगा दिया, ध्यान पे अगर लगा दिया, तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। रही भारत की बात कि ओलंपिक में हम 6 मेडल क्यों जीतते हैं और क्यों नहीं जीत सकते हैं, तो ये भी हमारे अंदर कमी है, हमारे सिस्टम ने सोचा नहीं अभी तक शायद कि हमें खेलों में भी इतने मेडल जीतने हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को, किसी को भी अगर डाउट हो, विश्व में किसी को डाउट हो, तो मैं वो साबित करके दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि हमारे हर गांव में अर्जुन हैं, हमारे हर गांव में द्रोण हैं, हमारे हर गांव में ध्यानचंद हैं और हमारे हर गांव में भीम सिंह जी बैठे हुए हैं। अगर किसी को डाउट है तो वो कोई भी पूछ सकते हैं, वो साबित करके दिखा सकते हैं। रही मेरे को 5 मिनट, जगबीर भाई ने बोला है कि 5 मिनट, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और 5 मिनट के अंदर मैं ये आप लोगों को ये बातें बताना चाहता हूँ, अगर किसी को भी, यहाँ जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हैं, किसी को भी लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो मुझसे मिलने बाद में, और मैं ये 5 मिनट के बाद अगर आप ये कहेंगे कि हाँ हम सब कर सकते हैं, तो ये माइंड की शक्ति, जो दिमाग की जो शक्ति है, उसके बारे में करता हूँ। जैसे शशि दीदी जी ने बोला कि मैंने भी पहले लिखा था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो बिल्कुल ठीक बात है कि जिस जो मन से हार गया वो हो सकता है कि विजेता ना हो, और जिसने जिसके मन में ये आ गया कि मैंने जीतना है वो जीतेंगे। ये आप लिख लेना आज अपनी जो भी डायरी लेके आए हैं। दूसरा, मैंने कुछ दिन पहले ही ध्यान से एक गाना है हमारा देशभक्ति के गानों में, मेरी बेटी भी आई है, वो हमेशा दिन भर वही गाती रहती है कि अगर आप लोग सब खेलने वाले, खिलाने वाले, सपोर्ट करने वाले, अगर एक गाना है कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, अगर इसको पूरे गाने को आप सुनेंगे, हर रोज सुनेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। एक वेजिटेरियन की बात बहन जी ने बोली, तो उसके बारे में भी एक छोटा सा मैं एक वाक्य हुआ। जब मैं पहली बार सीनियर टीम में, इंडिया टीम में जब खेल रहा था, तो हमारे कैप्टन थे मेरा वो प्रगट सिंह जी थे, और जो कोच थे वो वासुदेवन भास्करन जी, 1980 ओलंपिक के जो गोल्ड मेडलिस्ट टीम के जो कैप्टन थे वो मेरे कोच थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि राजेश, अगर आप नॉनवेज खाना स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे से मैं आपको टीम में नहीं रखूंगा। लेकिन पता नहीं मुझे कहाँ से शक्ति मिली, तो मैंने उनको बोला सर आप मुझे टीम में रखें चाहे ना रखें, लेकिन मैं नहीं खा पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने नॉनवेज को ज्यादा अहमियत दी, उन्होंने सिर्फ इस चीज को सोच के कि ये अगर कुछ नहीं खाएगा तो ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगा अगर भूखा रहेगा तो। लेकिन 2 साल के बाद कोच साहब ने, भास्कर जी ने सबके सामने ये बोला कि वेजिटेरियन इज द बेस्ट। तो वो सिर्फ मन की शक्ति की बात होती है, अगर आपने मन में ठान लिया चाहे आप कुछ खाते हो या नहीं खाते हो तो आप वो सब कुछ कर सकते हो। हो सकता है कि आपको बादाम ना मिले, हो सकता है कि आपको दूध ना मिले, हो सकता है कि आपको घी ना मिले, लेकिन अगर आपने मन में ठान लिया तो बादाम भी आपके मन के अंदर हैं, घी भी आपके मन के अंदर हैं, तो आप वो सब कुछ कर सकते हो, कभी किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं रहना आपने। दूसरा, जैसे मैं भी एक गाना गाता रहता हूँ कि जैसे पन्ना की तमन्ना, जैसे जैसे पन्ना की तमन्ना थी कि हीरा उसे मिल जाए, चाहे उसकी जान जाए चाहे उसका दिल जाए, वैसे अपनी भी तमन्ना है कि तिरंगा लहराए, चाहे अपनी जान जाए चाहे अपना दिल जाए। तो अगर ये गाते रहेंगे तो कभी भारत को कोई नहीं हरा पाएगा। लास्ट में खत्म करने से पहले एक और गाना, जैसे हम छोटे से बच्चों को सुनाते हैं कि हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता, तो मैंने अभी बैठे बैठे अभी एक छोटा सा एक लिखा है कि अगर हम किसी को प्लेयर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को विश्व विजेता बनाना चाहते हैं, तो एक गाना मैं अभी ध्यान में आ गया कि हम भी अगर अर्जुन होते नाम हमारा होता ध्यानचंद मिल्खा, ठीक है, खेल रहे होते दिमाग वाली हॉकी, आज भी होते ओलंपिक चैंपियन, फिर होंगे सोने की चिड़िया, विश्व कहेगा भारत भारत भारत। जय हिंद जय भारत। थैंक यू जी।
थैंक यू राजेश भाई जी, बहुत मोटिवेट किया और बहुत सारे टिप्स बताए, नेचुरल एंड इजी टिप्स। अभी इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हम कैंडल लाइटिंग से करते हैं।
शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत। मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
अपने अंदर भी मन की आत्मा की ज्योति शुभ संकल्पों से हम सब जागृत किया। अभी हमारे बीच में ब्रह्मा कुमार राजयोगी बसवराज राज ऋषि जी है, जो कि चेयरपर्सन स्पोर्ट्स विंग का और हुबली कर्नाटक में, जो हुबली सब जोन के इंचार्ज भी है और गवर्नमेंट के साथ, कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ जुड़ के स्कूल टीचर्स के लिए मेडिटेशन और सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग का भी बहुत वहां पर चलता है। हजारों टीचर्स को हर साल ट्रेनिंग देके उनको बहुत सशक्त करते हैं। तो भाई साहब हम सबको इंस्पिरेशन देंगे।
ओम शांति। ज्ञानेश्वर, ज्ञान सागर, परम प्रिय परमपित परमात्मा शिव जी के मधुर स्मृति में सारे भारत के कोने कोने से पधारे हुए अपना खिलाड़ी सभी भाई बहनों को हृदय भरी प्रणाम है। आप तो खिलाड़ी रतन है, खिलाड़ी वज्र है। आपको कोई भी सीमा नहीं है। जैसे रतन को, वज्र को, जो भी तरल को सीमा नहीं है, ऐसे आपको भी कोई सीमा नहीं है। आपको न भाषा का, न प्रांत का, न जाति का, न धर्म का, न कोई राजकीय पार्टी का सीमा नहीं है। आप तो विश्व के खिलाड़ी हैं, भारत के खिलाड़ी हैं। देश को प्रत्यक्ष करने के लिए, आप जीत के अच्छी मेडल पाने के लिए आपका एम एंड ऑब्जेक्ट है। ये सच्ची है आपकी एम एंड ऑब्जेक्ट जो होदा, ये सभी अपना एम ही है। परंतु ईश्वरी विश्वविद्यालय में आप पधारा है, आपको बहुमुखी है। मैं तीन बात को आपके सामने रखने के लिए मैं हर्षित होता हूं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारी जहान में तो बहुत मुख्य संस्था है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय को स्वयं परमपिता परमात्मा शिव जी ने स्थापन किया है अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा के तनु माध्यम से। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में खुद ही आप ईश्वरीय त्रिकाल ज्ञान योग और राज्यों की शिक्षा दे रहा है। हम सभी ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये लाभ लेने के लिए आपको बेस्ट चांस है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी स्टूडेंट होता है उसको बॉडी माइंड हाउ टू फिट एंड फाइन रखने के लिए सीखने की कला भी इधर हम लोग सिखाते हैं। ईश्वर के द्वारा हम लोग सीखते हैं, सबको भाई बहने अभी सिखाते हैं। वो लोगों का जो जीवन है, प्रैक्टिकल जीवन है, वो एग्जाम्पल है। साथ साथ दूसरा भी ये है, अपना जीवन भी एक केल है। ये जीवन के केल को हम लोग जैसे रखना, जैसे हार भी बहुत होता है, जीत भी बहुत होता है। जैसे खिलाड़ी भी लाइफ में हार और जीत तो देखा है, ऐसे इधर भी बहुत हार और जीत होता है। इसमें समचिता कैसे रखना, स्थित प्रज्ञ अवस्था कैसे रखना, ये सीखने के लिए हम लोगों को इधर बहुत बेस्ट चांस है। भगवान ईश्वर जी ने हम लोगों को सिखा रहा है। ये बात को आप, एक्सपीरियंस को आप लेना हमारी हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ता है इंजीनियर बनता है, लॉ कॉलेज में जो पढ़ता है वो लॉयर बनता है। जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वर का द्वारा जो पढ़ते हैं वो राजयोगी बनता है। उसको सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन वो एजुकेशन मिल जाता है। इसके द्वारा ये सामान्य मानव भी देवता बन सकता है। राज्यों के द्वारा मानव महामानव बन सकता है, महामानव देव मानव बन सकता है, नर से श्री नारायण बन सकता है, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकता है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ये मुख्य एम है। सारी भारत में, सारे विश्व में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी भाई बहने आता है वो सभी इधर एक ही विश्व कुटुंब ऐसे जान के तो अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाने के तो हम लोग सीखते हैं। मेरे लाइफ में भी, मैं स्टूडेंट लाइफ में भी से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्टूडेंट है, तो ये सच ज्ञान को देखकर जो परमपिता परमात्मा ही खुद इधर हम लोगों को शिक्षण दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, ये सब हम लोगों को जीवन में एक्सपीरियंस देखकर मेरे को बहुत खुशी हुआ। ये खुशी आपका सामने बांटने के लिए मेरे को अभी ये हर्षित है, क्योंकि आप भी भाई बहने हैं। भारत के जो भी भाई बहने होता है सो जीवन से ही वो लोग जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए तो बहुत इच्छुक है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड है भगवान को मिलने के लिए, भगवान से सीखने के लिए, आपको सारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमेशा वेलकम करता है। तो हम भी हार्टिली वेलकम करता हूं। तो धन्यवाद है। ओम शांति।
थैंक यू बसवराज भाई जी। हमारे बीच में इस कैंपस के, ज्ञान सरोवर के कैंपस के डायरेक्टर भी है, जो कि स्पिरिचुअल रिसोर्स पर्सन है यहाँ के, और ये पूरा परिसर में बहुत अच्छे से सब प्रोग्राम्स करने के लिए बहुत अच्छे से हम सबको मोटिवेट करते हैं और सपोर्ट भी देते रहते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, जो कि बहुत सालों से, बचपन से ब्रह्मा कुमारी इसमें जुड़े हुए हैं और देश विदेश में सेवाएं देते रहते हैं। खास करके ऑस्ट्रेलिया और एशिया के तरफ के जो भी ब्रह्मा कुमारीज ब्रांचेस है वहां के संचालिका भी है और सपोर्ट भी देते रहते हैं, और यहाँ पर भी इंडिया में ज्ञान सरोवर में भी रहते सभी को प्रेरणा देते रहते हैं, वो आज हम सबको ब्लेसिंग्स देंगे। डॉक्टर निर्मला दीदी जी,
ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे खिलाड़ी भाई बहने और सभा में उपस्थित हमारे भाई बहने, जीवन एक संग्राम भी है, एक खेल भी है, नाटक भी है। इस जीवन में ऊपर नीचे होता रहता है, परिस्थितियां आती है, संघर्ष होता है, विघ्न आते हैं, लेकिन इस जीवन रूपी खेल में हम किसको कहेंगे जो जीतता है, जो हर परिस्थिति को खुशी खुशी से पार कर लेता है और अपने जीवन में सुख शांति महसूस करता है। क्योंकि आज हर मनुष्य मात्र को, चाहे कोई भी फील्ड में हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, हर एक क्या चाहता है, प्यार, सुख और शांति। और हम लोगों ने देखा है कि जिनके पास मटेरियल वैभव है, आज भल लोग समझते हैं वो सुखी है, परंतु वास्तव में जब तक तन तंदुरुस्त नहीं है, मन शांत नहीं है, संबंधों में सुख नहीं है, तब तक वो व्यक्ति सुखी नहीं है। मतलब आज किसी से पूछो जीवन कैसे चल रहा है, तो कहेंगे हाँ चल रहे हैं, जैसे गाड़ी को पुश कर रहे हैं, ऐसे कोई खुशी मजे से बात नहीं करते हैं। और जहाँ भी देखो सब कंप्लेन करते रहेंगे, वेदर ठीक नहीं है, अभी देखो बिना मौसम के बारिश होती है, फसल खराब हो गई है, प्राइजेस सबके बढ़ गए हैं, तो कुछ न कुछ कंप्लेन चलती रहती है, या तो धन के बारे में, दाम के बारे में, कभी तंदुरुस्ती के बारे में कहेंगे मैं बीमार रहता हूँ, सर दर्द है, पेट दर्द है, टांगों में दर्द है, या कहेंगे हमारे घर में किसी को कैंसर है, इसको ये तकलीफ, हार्ट की तकलीफ है। तो इस रीति से देखते हैं कि जीवन में ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। और जैसे आप सभी ने सुना कि कैसे राजयोग द्वारा लोगों ने अपने मन को ट्रेन करके जीवन में अब सफलता पाई है, या खेलों में गोल्ड मेडल आदि लिए हैं, तो ये राजयोग का अपने फायदे तो बहुत पूर्व वक्ताओं से सुने। अब राजयोग क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्योंकि मटेरियल बातें तो सब जानते हैं, धर्म को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं सब भारत में, परंतु भगवान कौन है, हमारा जीवन का क्या लक्ष्य है, इस जीवन में सिर्फ खेल में उत्तीर्ण होना यही लक्ष्य है, या जीवन में सुख शांति प्राप्त करने का लक्ष्य है, या जीवन में सिर्फ मटेरियल साधन प्राप्त करने का लक्ष्य है, वो हर एक अपने आप से पूछे। और देखा गया है कि जितनी ये रूहानी स्टडी करते जाएंगे, आप देखेंगे कि उससे आपके जीवन में बहुत फायदे होंगे, विल पावर बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, और पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। क्योंकि जब कोई लक्ष्य रखता है कि हमको गोल्ड मेडल लेना है या सिल्वर मेडल लेना है, जब वो लक्ष्य सामने रखकर वो अपना पुरुषार्थ करता है तो नेचुरली है वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए बहुत पॉजिटिव सोचना भी पड़े, क्योंकि यदि कोई नर्वस हो जाता है लास्ट मोमेंट, तो कितना भी प्रैक्टिस किया है, कितना भी आगे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उस समय वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमने देखा है कि जितना जितना ये ईश्वर को जानकर, अपने आप को जानकर, जैसे सारे दिन में दिनचर्या में हम अपना समय फिक्स करते हैं कि चलो हमको ऑफिस में 9 से 5 जाना है, इस समय हमको खाना खाना है, इस समय हमको परिवार से बातचीत करनी है या सोशल विजिट करनी है आदि आदि। तो जैसे सब ऐसे हम फिक्स करते हैं, इसी रीत से यदि परमात्मा को याद करने का समय भी आप फिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मनोबल कितना बढ़ता है, और वो मनोबल बढ़ने से आप जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे पारिवारिक जीवन में, क्योंकि पारिवारिक जीवन में भी जितना हमारा स्वभाव मीठा होगा, शांत होगा, स्नेह स्वरूप होगा, नेचुरली हम जिसके भी संपर्क में आएंगे, चाहे परिवार है, चाहे हमारे जॉब के साथी है, चाहे खेल में खिलाड़ी है, हमारे साथी है, जो भी है उनके साथ जो संबंध है उसमें भी सुधार हो सकता है, क्योंकि जो अच्छे स्वभाव वाला है उसको सब प्यार करते हैं, उसके साथ सहयोग देते हैं, उनको रिगार्ड देते हैं। तो इसलिए जीवन में सच्ची सफलता हम उसको कहेंगे जो खुद भी संतुष्ट है और उनसे अन्य आत्माएं जो भी संपर्क में आते हैं वो भी संतुष्ट रहते हैं, और उसके लिए जो आंतरिक शक्ति प्राप्त करनी है, ये आप देखेंगे 3 दिन में आप यहाँ आए हो। मैं तो कहती हूँ आप बहुत भाग्यशाली हो जो यहाँ पर आए हो, और बहुत प्रेरणा लेकर जाएंगे कि कैसे हम अपने मनोबल को, इतना वृद्धि को पाए ताकि हम हर फील्ड में जीवन के सक्सेसफुल रहें और इतना हम अपने आप से संतुष्ट रहें जो औरों को भी हम संतुष्ट कर सके। तो ये आत्मा अपना परमात्मा, उसका समझ होने से परमात्मा की याद सहज हो जाएंगी, और जितना उसका आप अभ्यास करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस राज्यों के अभ्यास के द्वारा हमने देखा है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे अभी आपने जस्टिस ईश्वरय्या को भी सुना कि कैसे उन्होंने अपने प्रोफेशन में इतने अच्छे अच्छे केस बिना स्ट्रेस के हासिल किए। तो इसीलिए से हर प्रोफेशन वाले यहाँ आते हैं और इस राज्यों के अभ्यास से उन्होंने अपने जीवन में बहुत साधना से बहुत कुछ साध्य किया है। ओम शांति।
हमारी आदरणीय दीदी जी ने बहुत प्रेरणादायक बातें सुनाई, और इसके आगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने आ रहा है। मेयरचंद भाई, आप सभी का धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए देखिए आपको कहाँ ले जाएंगे। हो सकता है आसमान की ओर ले जाएं, हो सकता है सागर की ओर ले जाएं, हो सकता है कहीं और ले जाएं। तो आप इनकी शायरी से लाभान्वित होंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। हम मेयरचंद भाई का भी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। बहनें आकर के दीदी को सौगात दें। हमारी आदरणीय दीदी जी, मंच पर उपस्थित हमारे चारों ही बाबा के विशेष रत्नों को शाल पहनाकर सम्मानित करें। आप जोर से ताली बजाएंगे। नीरज भाई, थैंक्स से पहले एक जरूरी सूचना आप सबको बता दें, कल से आपकी कॉन्फ्रेंस का सारा कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। आप सबको प्रोग्राम बुकलेट मिल गई है। कल प्रातः 4 बजे से यहाँ मेडिटेशन आरंभ होगा और 7 बजे विशेष राजयोग शिविर का कार्यक्रम है, जो किसी को मिस नहीं करना है, जिसके अंदर आपको सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी। सभी को समय पर आना है और प्रोग्राम बुकलेट में जो भी हर रोज का प्रोग्राम है उसे ध्यान से पढ़ करके समय पर ही सभी आएंगे। अभी मेयरचंद भाई धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मेयरचंद भाई,
ओम शांति। परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, डायरेक्टर बीके अकेडमी ज्ञान सरोवर माउंट आबू, डॉक्टर बीके बसवराज राजऋषि जी, चेयरमैन स्पोर्ट्स विंग हुगली, दीदी शशि जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स विंग माउंट आबू, भ्राता जगवीर जी, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स विंग माउंट आबू, मैडम अमरज्योति सिंह जी, असिस्टेंट डायरेक्टर साई NSNIS पटियाला, मिस्टर नीरज कुमार मेहरा, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन, जस्टिस ऐश्वर्य जी, चेयरमैन नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एंड फॉर्मर जस्टिस दिल्ली, मिस्टर राजेश चौहान, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर दिल्ली, कोऑर्डिनेटर बहन वसंता जी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज अत्यंत खुशी का दिन है कि आप सब इस परिसर में पधारे हैं। सच्चा स्पोर्ट्समैन किसको कहा जाए? क्या वो जो बहुत गोल्ड मेडल ले लेता है, या उसे कहा जाए जो बहुत प्रसिद्धि गेन कर लेता है इस विंग में? क्या उसे कहा जाए जो बहुत धन कमा लेता है, या उसे कहा जाए जो बहुत शारीरिक तौर से बलिष्ठ हो जाता है? सच्चा स्पोर्ट्समैन उसे कहा जाएगा जो हार जीत में भी अपने आनंद को नहीं छोड़ता है। सचिन तेंदुलकर, जिसको महानता की डिग्री प्राप्त है खेल विभाग में, क्यों? क्योंकि कभी भी अंपायर द्वारा उसकी बिना गलती के भी उसको निकाल दिया गया, उसने कभी जीवन में रिएक्ट नहीं किया। इस फ्रेम में केवल एक ही चित्र फिट होता है, वो सचिन तेंदुलकर। इसलिए उसको मानता है कि डिग्री से सम्मानित किया गया है। भले उसने बहुत अच्छे गोल्ड मेडल भी लिए हैं, प्रसिद्धि भी प्राप्त किया है, परंतु महानता की डिग्री से उसको जो सम्मानित किया गया वो इस कारण से है। आज हमारे बीच में हमारे दीदी निर्मला जी, जो कि इस परिसर के इंचार्ज हैं, जो अभी आपको मनोबल के ऊपर बोल रहे थे, क्योंकि संसार में जिन लोगों ने भी कोई ख्याति प्राप्त की है, उन्हीं लोगों ने किया जो मनोबल जिनके अंदर असीम रहा है। गांधी जी 5 फुट 2 इंच के थे, 48 शेर वजन था। शारीरिक तौर से वो बलिष्ठ नहीं थे, परंतु मनोबल के आधार पर ही उन्होंने भारत को आजादी दिलवाई थी। दीदी जी ने मनोबल के ऊपर बहुत अच्छी बातें कही, मैंने उनके लिए 4 लाइनें दे रहा हूं उनके धन्यवाद प्रस्ताव में। काबिले तारीफ तुम्हारा अंदाज होगा, काबिले तारीफ तुम्हारा अंदाज होगा, तुम्हारे सलीके पर दीदी सबको नाज होगा, तुम्हारे सलीके पर दीदी सबको नाज होगा। नम्रता और सत्यता के संतुलन से ये दो क्वालिटीज दीदी में झलकती हैं, ये परिसर का बच्चा बच्चा जानता है। नम्रता और सत्यता के संतुलन से हर दिल पर तुम्हारा राज होगा, हर दिल पर तुम्हारा राज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। हमारे बीच में हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर बी के बसवराज राजऋषि जी हुबली से पधारे हैं, बहुत ही नम्रचित हैं। उनके लिए भी उन्होंने अपने विचार आपके आगे रखे, भले वो हिंदी इतनी नहीं जानते, परंतु फिर भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया हिंदी में आपको लेक्चर देने का, क्योंकि वो इंग्लिश के तो मास्टर हैं, इंग्लिश तो ऐसे बोलते हैं बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से, परंतु हिंदी में उन्होंने बोला, हम उनके बहुत आभारी हैं। फिर भी उनके लिए 4 लाइनें दे रहा हूं मैं। शुक्रिया शुक्रिया आप यहां पधारे, शुक्रिया शुक्रिया आप यहां पधारे, स्नेह सुमन से स्वागत करते शिव के राज दुलारे। ज्ञान सरोवर की फुलवाड़ी में तुम आए अनोखे फूल, ज्ञान सरोवर की फुलवाड़ी में तुम आए अनोखे फूल, स्वागत है सत्कार है भ्राता जी, करना दिल से कबूल, करना दिल से कबूल। इस कार्यक्रम जिसमें आप पधारे हैं, हमारे शशि दीदी जी बहुत व्यस्त होते हुए भी, क्योंकि कभी विदेशों में जा रहे हैं और पांडव भवन का परिसर को संभाल रहे हैं, बहुत ही कार्य उनके पास होता है। दीदी जी तो रहते ही मास में 15 दिन बाहर ही हैं। दीदी जी का तो फ्लाइंग, वो तो हमेशा हवाई जहाज में ही मिलते हैं, बहुत सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं दीदी निर्मला जी तो, परंतु दीदी का भी कोई काम नहीं है। और ये स्पोर्ट्स विंग को संभाल रखा है और डे बाय डे प्रगति की ओर जा रहा है स्पोर्ट्स विंग, तो दीदी जी के ही कारण है, उनकी बहुत एफर्ट्स हैं इसमें। तो मैं उनके लिए 4 लाइनें लिखी हैं। हर लब पर आपका नाम होगा, हर लब पर आपका नाम होगा, हर कदम पर आपको सलाम होगा, हर लब पर आपका नाम होगा, हर कदम पर आपको सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरी बहन, ये वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा, ये वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। भ्राता जगबीर जी जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स विंग को, आप वो कोऑर्डिनेटर हैं और आप सभी को आमंत्रित करके बुलाया है, और सदा इधर उधर हमेशा इसी कार्य के लिए वो अपना दिन रात एक किए हुए हैं। हम कभी देखते हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं स्पोर्ट्स के कार्यक्रमों में, उनको धुन लगी हुई है दिन रात 24 घंटे। उनके लिए भी मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। खुदा से क्या मांगू मेरे दोस्त तेरे वास्ते, खुदा से क्या मांगू मेरे दोस्त तेरे वास्ते, सदा खुशियों से भरे हों तेरे रास्ते, सदा खुशियों से भरे हों तेरे रास्ते। हंसी तेरे चेहरे पर रहे हमेशा इस तरह, हंसी तेरे चेहरे पर रहे सदा इस तरह, खुशबू गुलाब के फूल के साथ रहे जिस तरह, खुशबू गुलाब के फूल के साथ रहे जिस तरह। आदरणीय जगबीर जी बहुत ही कर्मठ हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वो ये कार्यक्रम हर साल रखते हैं और भाई बहनों को यहां आने का सुअवसर प्रदान करते हैं। हमारे बीच में मैडम अमर ज्योति सिंह असिस्टेंट डायरेक्टर साई एनआईएस पटियाला से पधारे हैं, बहुत ही शुभ विचार आपको दिए, उनके लिए भी मैं चार लाइनें दे रहा हूं। आपके आने का आंखों में ख्वाब संजोए बैठे थे, आपके आने का आंखों में ख्वाब संजोए बैठे थे, आपकी यादों को दिल में बसाए बैठे थे, इस सुनहरी घड़ी का था इंतजार हमें मैडम, इस सुनहरी घड़ी का था इंतजार हमें, इसी दिन के लिए हम नगमे सजाए बैठे थे, इसी दिन के लिए हम नगमे सजाए बैठे थे। क्या आपके विचार सुनेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मिस्टर नीरज कुमार मेहरा जी, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव इंडिया इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन पधारे हैं, मैं जब यहां पर आया तो वो अपने विचार प्रकट कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, उनको ये वातावरण भी बड़ा भा रहा है, उनके लिए मैं चार लाइनें दे रहा हूं। सूरज की तरह चमको तुम, सूरज की तरह चमको तुम, चांद की तरह खिलो तुम, फूलों की तरह महको तुम, बहारों की तरह झूलो तुम। हमारी भी एक तमन्ना है मेहरा साहब, हमारी भी एक तमन्ना है, बाबा के घर को न भूलो तुम, बाबा के घर को न भूलो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा साहब। हमारे बीच में जस्टिस साहब जी आए हुए हैं, जस्टिस साहब को तो हम भली प्रकार से जानते हैं, क्योंकि गीता के भगवान के ऊपर आपके विचार हमेशा सुनते रहते हैं। आज स्पोर्ट्स विंग में भी आप पधारे हैं, हम आपका बहुत आभारी हैं। जस साहब बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी हैं, उनके चेहरा ही आपको दिख रहा है कैसे शांत चित्त होकर बैठे हैं। चार लाइनें दे रहा हूं जस्टिस साहब के लिए। फूलों की वादियों में बसेरा हो आपका, फूलों की वादियों में बसेरा हो आपका, तारों के आंगन में खूबसूरत सवेरा हो आपका, दुआएं हमारी आप चमकते सितारे के लिए, दुआएं हमारी आप चमकते सितारे के लिए, खुशियों से भरा हो सदा नसीब आपका, खुशियों से भरा सदा हो नसीब आपका। धन्यवाद जस्टिस साहब, आप स्पोर्ट्स विंग में आए हैं, आपका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच में मिस्टर राजेश चौहान अभी आपको खूब गीत सुना रहे थे, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, क्योंकि वास्तव में वो ये शो करना चाह रहे थे आपको कि जब तक जीवन में उत्साह नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, उत्साह के बिना जीवन लाश की तरह है, यदि जीवन में उत्साह है तो आप अपने मोटिव में सफल हो सकते हैं, यदि उत्साह नहीं है तो असफलता का मुख आपको देखना ही पड़ेगा। वो उत्साह के लिए ही गीत गा रहे थे कि प्लेयर्स में यदि उत्साह क्रिएट कर दिया जाए, चाहे वो गीतों से किया जाए, चाहे जैसे भी अपने लेक्चर से किया जाए, परंतु प्लेयर के अंदर उत्साह का संचार होना आवश्यक है, और जब तक उसमें उत्साह नहीं है तो वो खेल जगत में कभी सफलता की मंजिल को नहीं छू सकता। तो मैं चौहान साहब के लिए भी चार लाइनें दे रहा हूं। हे आसमां आपको करोड़ों सितारे मुबारक, हे आसमां आपको करोड़ों सितारे मुबारक, एक चेतन सितारा ज्ञान सरोवर में आ गया है, एक चेतन सितारा ज्ञान सरोवर में आ गया है, हे सागर तुझे करोड़ों मोती मुबारक, हे सागर तुझे करोड़ों मोती मुबारक, एक चेतन मोती ज्ञान सरोवर के फरिश्तों को भा गया है, ज्ञान सरोवर के फरिश्तों को भा गया है। धन्यवाद चौहान साहब। हमारी बहन जो इस मंच को कंडक्ट कर रही है, बहन वसंता के लिए भी मैं बहुत अच्छे कुशल ढंग से वो इसको संभाल रहे थे और आपको बीच बीच में बातें भी बता रहे थे, उनके लिए भी चार लाइनें दे रहा हूं। बहन जी का तो क्योंकि आभार प्रकट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेज उन्होंने ही संभाल रखी थी। मेहमान निवाजी और दिल से सत्कार है, फूलों और तालियों से अभिवादन बारंबार है, आपके आगमन से ये गुलशन भी गुलजार है, क्योंकि इस गुलशन का माली समय निराकार है, क्योंकि इस गुलशन का माली समय निराकार है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप कहेंगे हमारे लिए कुछ नहीं बोला, हमारे जो स्पोर्ट्समैन आए हुए हैं इतने दूर दूर से, कितनी सफर करके आए हैं, आज पहला दिन है उनका, किसी ने छुट्टियां ली हैं, किराया खर्चा है तो, और इतनी दूर से घर बार छोड़कर आए हैं, आपके लिए मैं चार लाइनें दे रहा हूं। आपको तो बहुत धन्यवाद है जो इतने समय से यहां बैठे हैं। दिल में ठान लिया जिन्होंने कुछ करने के लिए, स्पोर्ट्समैन जब तक मन में ये लक्ष्य नहीं ले लेता कि मैंने विजय हासिल करनी ही है, दिल में ठान लिया जिन्होंने कुछ करने के लिए, दामन में सबके खुशियों को भरने के लिए, ऐसे खिलाड़ियों को मैं वंदन करने आया हूं, ऐसे खिलाड़ियों को मैं वंदन करने आया हूं, उनका अपने शब्दों में अभिनंदन करने आया हूं, उनका अपने शब्दों में अभिनंदन करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मेहरचंद भाई के लिए भी ताली से ही हम शायरी सुना देते हैं। यही हमारे, हम सभी भी मेहरचंद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सबको खूब हंसाया और बहलाया और सबके लिए चार लाइन, कोई कम नहीं किया, सबके लिए चार लाइन थी। तो अभी हम सभी एक मिनट परमपिता परमात्मा की याद में बैठेंगे जिन्होंने हमें शक्ति दी है।
हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने